हैं प्रभुपाद जी लिखते हैं, सन्यासी वह होता है जो भली भांति समझता है कि ब्रह्म स्वयं आत्मा है, शरीर नहीं। जिसे यह समझ है वह सन्यास ग्रहण कर सकता है, क्योंकि वह अहम ब्रह्मास्मि पद पर स्थित होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। जो व्यक्ति न तो सोचता है और न अपने शरीर के पालन करने की लालसा करता है, किंतु सभी जीवों को आत्मा के रूप में मानता है, वह भगवान की भक्ति कर सकता है। यदि वह भगवत भक्ति में प्रवेश नहीं करता, अपितु वह समझे बिना ही आत्मा तथा शरीर भिन्न है, झूठे ही अपने को ब्रह्म या नारायण मानता है, तो निश्चित रूप से नीचे गिरता है, पतन दद। ऐसा व्यक्ति फिर से शरीर को महत्व प्रदान करता है। भारत में ऐसे अनेक सन्यासी हैं जो शरीर को विशेष महत्व प्रदान करते हैं और उन्हें दरिद्र नारायण के रूप में स्वीकार करते हैं। मानो नारायण के भौतिक शरीर होता हो। अन्य अनेक सन्यासी शरीर की सामाजिक स्थिति के महत्व पर बल देते हैं, यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सता शूद्र। ऐसे सन्यासी सबसे बड़ी धूर्त असत्तमा समझे जाते हैं। वे निर्लज हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक शरीर तथा आत्मा का अंतर्ज्ञात नहीं हो पाता और ब्राह्मण के शरीर को ही ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मण या ब्राह्मणत्व ब्रह्म के ज्ञान में निहित है। ब्राह्मण का शरीर ब्रह्म नहीं है। इसी प्रकार शरीर न तो धनी होता है न दरिद्र। यदि दरिद्र का शरीर दरिद्र नारायण होता है, तो धनाढ्य व्यक्ति का शरीर धनाढ्य नारायण कहलाता। अतः जो सन्यासी नारायण का अर्थ नहीं जानते, जो शरीर को ब्रह्म या नारायण मानते हैं, वे यहाँ तक अत्यंत घृणित धूर्तों के रूप में असत्तमा बतलाए गए हैं। देहात्म बुद्धि के वशीभूत ऐसे सन्यासी शरीर की सेवा के विभिन्न कार्यक्रम बनाते हैं। वे तथाकथित धार्मिक कृत्यों के झूठे उद्देश्यों से जनता को गुमराह करते हैं। यहाँ पर ऐसे सन्यासियों को अपत्रप तथा असत्तमा अर्थात निर्लज या पतित कहा गया है। मम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मितंगेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदंतिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवाश्च श्री रूपं सागर जातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सगण ललिता श्री विशाखान्वितास्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। सब लोग गाओ, हाथ जोड़ के सब लोग गाओ। यं प्रवजंत मनुपेतं पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रीति तन्मयितया तरवो अभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोस्मि। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम। नमस्ते सरस्वतीदेवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा नारद जी महाराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं। सन्यास धर्म के ऊपर श्लोक है। हमको इस श्लोक के ऊपर बोलने का अधिकार नहीं क्योंकि हम सन्यासी है ही नहीं, हम तो जिस स्टेज पे है उस स्टेज पे भी फिट नहीं है, सन्यासी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर भी संक्षेप में प्रभुपाद के तात्पर्य को आश्रय लेके मैं कुछ कहने का प्रयास करता हूं। अमली पी के धरे ध्यान, सुनो ध्यान से, अमली पी के धरे ध्यान और ग्रही होके कथे ज्ञान, साधु होके कूटे भग, कहे दासे तीनों ठग। अमली जानते हैं, नशा हुक्का पीते हैं कई लोग। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में ये मायावादी सन्यासी के बारे में लिखा है जो नमो नारायण नमो नारायण। तो कोई व्यक्ति कहे सन्यासी कि मैं हुक्का पी के चरस पी के मेरा ध्यान भगवान में लगेगा, ये यथार्थ बात नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं। अग्रही होके कथे ज्ञान, कोई व्यक्ति कहे कि मैं संसार में भी रहूं और भागवत आसन पर भी बैठूं, गलत बात। दुनिया भर के सारे धंधे करना और फिर व्यास आसन पर भी बैठ के भाषण देना, इसको कहते हैं ग्रही होके कथे ज्ञान। भाषण दे सकता है, 18,000 श्लोक याद कर लो, 700 भगवत गीता की कर लो, जितना भाषण दे सकते हो, लेकिन यथार्थ में क्या उन श्लोकों को उन विचारों को हम अपने जीवन में उतार सकेंगे? बहुत कठिन है, कलि काल में बहुत कठिन। इसलिए ग्रह प्रपंची के मुख से भागवत नहीं सुनना चाहिए। अगर वो भागवत करता है सिर्फ भागवत और उसी पर अपनी आजीविका चलाता है जो प्रभु की कृपा से प्रसाद मिल जाए, ये नहीं कि भागवत कथा के आश्रय में कुछ दूसरे धंधे करता हो, मान सम्मान के लिए करता हो, नाम के लिए करता हो, प्रतिष्ठा के लिए करता हो, इसलिए ऐसे ग्रही का ज्ञान बेकार। और साधु होके कूटे भग, भग मतलब भांग, जो साधु होके भांग कूटता है, महापुरुष कहते हैं तीनों ठग, सब ठग लोग। इस संसार में बहुत कठिन है, बात करना बहुत सरल है लेकिन प्रैक्टिकल जीवन कठिन। काजर की कोठरी में कैसो हूं सयानो जाए, लेकिन काजर की एक रेख लागी है पहलागी है। कितना ही चतुर भक्त कहने नहीं, हम संसार में कमल के फूल की तरह रहते हैं, कीचड़ में नहीं रहते। भाषण देने से प्रवचन देने से नहीं होता, प्रैक्टिकल क्या संभव है? ये संसार काजर की कोठरी है, कोयले की खान। कोयले का गोडाउन देखा, एक ग्राउंड लगा गया अंदर, कितना भी आप बचने का प्रयास करो कहीं ना कहीं एक रेख लग जाएगी, पीठ पर लग जाएगी, हाथ पर लग जाएगी। इस संसार को काजर की कोठरी का। और इस संसार में कोई ये कहे कि बस अब मैं सब जान गया, एक भजन है आपने सुना है वो, चलती चक्की देख कर कहा कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में शाबुद बचा न कोई। ये उस भगवान कृष्ण की चक्की है, चक्की के दो पार्ट होते हैं। वो दो पार्ट क्या है, एक पार्ट दिन होता है, एक पार्ट रात होती है। उसमें जो बीच में दाने पिसते हैं अनाज के, उन दानों को जीव कहते हैं। हम सब लोग दाने हैं। तो उस चक्की के पार्ट के बीच में जो दाना है वो तो बच नहीं सकता कभी। दो पाटन के बीच में साबुत बचाने को सब आटा हो जाता। लेकिन इस चक्की में भी कुछ लोग बच जाते हैं। कौन? चलती चक्की देख कर हंसा कमाल ठठाए, जो कीली से लग रहा वो पूरा बच जाए। चक्की के बीच में एक मानी होती है, देखा आपने लकड़ी, तो जब ऊपर से हम दाना डालते हैं तो कुछ दाने मानी के ऊपर आ जाते हैं। तो जो मानी के चक्कर में जो दाना आता है वो पिसने से बच जाता है, जो चक्कर में नहीं आता वो पिस जाता है। इसलिए जो जीव भगवान के भक्तों के सत्संग के चक्कर में आ जाए बच गया, और जो नहीं आए सटक गया। इसलिए जो भगवत शरणागत हैं, भगवान के भक्त का जो जीवन है वो चाहे जवानी है बुढ़ापा है, वो सब धन्य होता है। क्यों? क्योंकि उसका सर्वस्व भगवान के लिए समर्पित है। शबरी प्रसंग की कथा है। शबरी जी जब भक्त बनी तब 9 साल की थी, और जब मरी तब लाखों साल की थी। जिस दिन उनके गुरु मरे उस दिन से 10,000 साल बाद भगवान मिले सबरी को। लेकिन सबरी के जीवन में कहीं भी ऐसा प्रसंग नहीं आता कि उन्होंने जवानी में इसमें कहीं कोई ऐसा अपराध किया, क्योंकि जो गुरु शरणागत हो जाते हैं, भगवान के शरणागत हो जाते हैं, उनकी जवानी भी धन्य होती है, बुढ़ापा भी धन्य होता है, बचपन भी धन्य होता है। जो सिर्फ आश्रय लेते हैं, सिर्फ आश्रय लिया, दिखावा किया, वो नहीं, वो कभी भी फंस सकता है। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रा जपा तपा अपरानस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। जैसे क्रिश्चियन लोग, ईसाइयों का कभी मुर्दा मर जाता है तो क्या करते हैं लोग, उसको सुंदर दूल्हा बनाएंगे, सूट पहनाएंगे, बूट पहनाएंगे, मेकअप करेंगे, बाल डाई करेंगे, जैसे दूल्हा शादी होती है वैसा कर। और उसकी बारात निकलती है, आपने देखा है ईसाई लोग जब डेड बॉडी ले जाते हैं तो बहुत बड़ी बारात जाती है, जैसे शादी की बारात। इस बारात का कोई मतलब, उस मेकअप का कोई मतलब, उस सूट बूट का कोई मतलब, उसका मतलब क्या है, उसका गंतव्य खड्डे में जाना है। वैसे जो बाह्य आवरण से दिखावा करके वस्त्रों के द्वारा, जटिलो मुंडी लुच्छित केश काशा यांबर बहुकृत वेश पश्य नपि च न पश्य भी मूढ़ो उदर निमित्तम बहुकृत वेश। जो उदर निमित्त के लिए, पेट भरने के लिए सब स्वरूप धारण करते हैं, ये सब ठग। मुंड मुंडाए तीन गुण सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। सिर मुड़वाने से बहुत फायदे, कंगी की जरूरत नहीं। देखो हम जुए नहीं होते जिनके सर में बाल नहीं होते। महाराज अलग, महाराज स्वामी जी आई आई, कोई भी पानी भी देगा तो एक लड्डू बर्फी जरूर खाने को मिलेगी। ये वाह आवरण मिलेगा, भगवान की भक्ति करने से मिलेगा, लेकिन खाली हम वही आवरण धारण करें। हमने कुंभ में देखा है, नागा लोग देखे आपने, बहुत खतरनाक होते हैं नागा लोग। आप उनको कभी पैसा दे के देखो, अगर आपने जो असली नागा होगा उसको कभी आपने 100 रुपए दे दिया, आपको गंदी गाली देगा, बड़ा आया पैसे वाला, बड़ा धनी मानी हो गया, मेरे को पैसा देगा तू। तो हम एक सन 2000 में हम इलाहाबाद में थे कुंभ, मैंने कभी नागा देखे नहीं थे, तो हमने कहा देखेंगे, जूना खड़ा इधर उधर हम गए, तो हमको रास्ते में एक नागा मिला, एकदम ठंड जनवरी के महीने की ठिठरा रहा था। हमने कहा ये नागा, तो हमारे से जो महात्मा थे बोले नहीं, ये सिर्फ 2 महीने के लिए नागा, यानी जब तक कुंभ चलेगा तब तक के लिए नागा, अगले कुंभ तक 2 महीने में कमाई अच्छी हो जाती, 2 महीने में इतनी कमाई हो जाती है तो अगले कुंभ आने तक खर्चा चल जाता है, फिर नागा 2 महीना। और जब हम असली नागाओं के कैंप में गए अखाड़े में, तो बोलते चलो हटे यहां से, खड़े हो जाते हैं, पता नहीं कहां से आ जाते हैं, बताओ उनको कोई आदमी चाहिए ही नहीं उनके सामने। तो हमने 3-4 दिन हमने वह अखाड़े में मैं गया, तो एक दिन मैंने महात्मा को पूछा आप ऐसा क्यों बोलते हैं। उसने कहा महाराज देखिए, हम 100 ग्राम रोट आटा हमको चाहिए रोज, और 100 ग्राम आटे का हम नमक की डेली डाल के खाते हैं, और हम पेड़ के नीचे रहते हैं जंगल में, घास भूस को उठा के लाते हैं, उसको जलाते हैं, रोटी बनाते हैं, खाते हैं, हमको किसी के एहसान की क्या जरूरत। तब हमें पता लगा कि नागा कैसे होते हैं। बहुत कठिन है पहचान करना। सन्यासियों में भी, मैं भी उत्तरांचल में 2-3 महीने से मैं वहां कथा कर रहा हूं, उत्तराखंड आप गए होंगे, तो हमारे साथ कुछ अखाड़े के नागा लोग हैं जो भागवत कथा कराते हैं। तो हमको नागा ने बताया, जो मेरा खास आदमी है, उसने कहा प्रभु जी मैं आपको सही बात बताता हूं, हमारे जैसे आप अपने संप्रदाय की बात जानते हैं वैसे मैं अपने संप्रदाय की बात आपको बताता हूं। तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे संप्रदाय में 75% सन्यासी शराब पीते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति खुद शराब पीता है वो दूसरे को शराब पीने से मना कैसे कर सकता। उन्होंने हमें अंदर की बात बताई और हमने आपको बता दी, क्योंकि आप भी बाहर के नहीं हो, अंदर के ही हो ना, बाहर के हो, भक्त मत अंदर के। सन्यासियों में भी ये हुए मायावादी सन्यासी जिनका प्रभुपाद जी जिक्र करते हैं। हमारे वैष्णव संप्रदाय में भी 13 बाहुल संप्रदाय हैं। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जब हम करते हैं और लोग भी करते हैं, 13 संप्रदाय हैं ऐसे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जिनको बाहुल संप्रदाय कहा जाता है, कभी कभी उनको सहजिया भी कहते हैं। सहजिया मतलब मटन भी खाएंगे, मच्छी भी खाएंगे, दारू भी पियेंगे और नाम भी जपेंगे, तिलक भी लगाएंगे। उनको बोलो ऐसा क्यों करते हो, बोलते हैं भगवान ने कहा है गीता में, यत करोषि यदशनासि यज्जोषि ददासि, जो तुम खाते पीते हो सब हमको भोग लगाओ। तो हमने कहा दारू भोग लगाओ कहाँ लिखा है भाई। हमको एक बार एक बंगाली परिवार मिला तो बहुत मच्छी वगैरह खाते थे, लेकिन जब भी करते हैं तिलक भी है, बोले हम जो भी खाते हैं ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और उसके बाद हम प्रसाद रूप में खाते हैं। श्री प्रभुपाद जी ऐसे लोगों को सहजिया करते, नियमों का पालन करना नहीं और भक्ति भी करनी है। नेपाली में कहावत है कि गांव में एक सकरा रास्ता होता है, छोटा छोटा खेतों के रास्ते देखा आपने, तो गपैक डंडी बोलते हैं उसको। तो गांव में आपने देखा होगा कि अभी तो टॉयलेट बाथरूम बहुत हो गए, लेकिन पहले लोग पगडंडी के किनारे बैठ के पखाना करते थे दिशा में। तो एक आदमी पगडंडी में बैठ करके पखाना कर रहा था, तो गांव में क्या होता है जब कोई पखाना करेगा अगर आपने देख लिया तो आदमी इतना शर्माता है कि सामने से गुजरने से डरता है। जैसे शहरों में तो आपने देखा होगा सब काम सब साथ में चल रहा है, पकाना भी हो रहा है, टॉयलेट में भी बैठा है, सामने से आदमी भी गुजर रहा है, कोई डर नहीं कोई से। लेकिन गांव में शर्माते हैं अभी तो। बहुत लोग जो उधर से आ रहे थे उधर खड़े हो गए, इधर से आ रहे थे इधर खड़े हो गए, एक घंटा हो गया वो व्यक्ति उठता ही नहीं। तो किसी ने हिम्मत करके पूछा, भाई हम तो लेट हो जाएंगे, हमारा काम से जाना है। तो एक ने हिम्मत करके वहीं गया, कहा कि तुम पाखाना कर रहे हो या रास्ता छोड़ रहे हो। उसने कहा ना तो हम पाखाना करेंगे और ना ही रास्ता छोड़ेंगे। मतलब क्या, हम नियमों का भी पालन नहीं करेंगे लेकिन भजन भी करेंगे। हमको सब चाहिए, खाना पीना देखना सब, लेकिन भजन भी हम करेंगे। ऐसे भजन की बात शास्त्रों में नहीं कही गई। छोटा सा बुखार भी किसी को आता है तो डॉक्टर बोलता परहेज करना पड़ेगा, ये दवाई लो, इतने दिन चावल मत खाना, इमली मत खाना, दही मत खाना बोलते हैं। वैसे ये नियमों का पालन क्यों किया जाता है? अपना परलोक सुधारने के लिए, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए, भव रोग से मुक्त होने के लिए। तो जब एक छोटे से रोग मुक्त होने के लिए थोड़ा सा नियम है, तो भव रोग से मुक्त होने के लिए भी तो कुछ नियम है। इसलिए नियमों का पालन। कली काल में कहा कि ना कोई शूद्र है, ये तो 5,000 5,500 साल पहले की बात है। कली काल में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या श्लोक है, दास दासानो दास लास्ट पद, न मैं क्षत्रिय हूं, न मैं ब्राह्मण हूं, न मैं वैश्य हूं, न मैं शूद्र हूं, न मैं ब्रह्मचारी हूं, न सन्यासी हूं, न ग्रस्त हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हम दास के दास के दास के दासों के भी दास, ये पदवी दिया, हम सब दास हैं। कली काल में कोई सन्यासी नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं, न सब शूद्र हैं, कलो शूद्र संभवा, हम सब शूद्र हैं। जो भजन करेगा वो भक्त ब्राह्मण, जो भजन नहीं करेगा ब्राह्मण भी है लेकिन काम शूद्र जैसे करता है। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के ने नए, यही कृष्ण तत्व वेता सही गुरु है। ब्राह्मण कुल में हमारा जन्म हुआ, काम हमारे शूद्र जैसे। ब्राह्मण लोग बाटा की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, बताओ। ब्राह्मण को पूछे क्या धंधा, बाटा की एजेंसी है ना हमारे पास, आजकल रिलैक्सो चप्पल बेच रहा हूं, बताओ ये ब्राह्मण का धर्म है? कोई ब्राह्मण है? क्षत्रिय लोग पूजा पाठ करते हैं, कहीं देखा मैंने। पैसा पैसा उद्देश्य, यहां तक कि धामों में भी ब्राह्मणों की स्थिति खराब है। आप वृंदावन कभी जाते हो, मथुरा में विश्राम घाट में, घाटों सब ब्राह्मण लोग कैसे झपटते हैं, कहां से आए? बॉम्बे, मैं ही हूं वहां का आचार्य, देखो तुम्हारे 10 पीढ़ी के दादा का नाम दिखाता, दिखा देगा। अभी कुछ साल पहले की घटना है, एक बॉम्बे के एक सेठ जी गए विश्राम घाट में मथुरा में, तो ब्राह्मण लोग झपटे एकदम। विश्राम घाट में आपने देखा है सब ब्राह्मण आते हैं ना, कहां से आए? बॉम्बे, दिल्ली। और हमको देखेगा तो उसका मुख काला हो जाता, बोला लाल बंदर आगे बोलता, क्योंकि उनको पैसा खाने को नहीं मिलता। हमने कहा खाओ भाई पैसा जाओ। हम लोगों को देखेंगे तो समझते हैं अभी कोई दिहाड़ी होने वाली नहीं है। तो कुछ साल पहले की घटना आपने भी सुना होगा कि सेठ जी गए थे विश्राम घाट दर्शन करने, तो तो ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि कुछ रबड़ी खिलाइए सेठ जी। सेठ ने कहा मैं रबड़ी ये 100 ग्राम 200 ग्राम नहीं खिलाऊंगा, मैं 10 किलो रबड़ी खिलाऊंगा, कोई खाने को तैयार है? तो सब एकदम, सेठ जी ने कहा मुझे चाहे पूरे मार्केट की रबड़ी खरीदनी पड़े और मंगानी पड़े बाहर से, अगर तुम में से कोई एक आदमी 10 किलो रबड़ी खा ले, रबड़ी भी खिलाऊंगा, ऊपर से एक आदमी को 11,000 रुपए इनाम भी दूंगा। तो बहुत देर तक किसी की हिम्मत नहीं, लास्ट में बहुत देर बाद एक ब्राह्मण बोला मैं खाऊंगा। सेठ जी ने कहा दुकानदार से 10 किलो रबड़ी लाओ, लेकिन उसने ये कहा ब्राह्मण ने हमारी एक शर्त है कि हम 10 किलो रबड़ी खाएंगे लेकिन पहले 5 किलो खाऊंगा उसके बाद 5 किलो खाऊंगा, पहले मैं 5 किलो खाऊंगा फिर 10-15 मिनट ऐसे दौड़ लगा के आऊंगा फिर 5 किलो खाऊंगा। तो ब्राह्मण ने 5 किलो रबड़ी खाई, जब खा लिया तो दौड़ के गया विश्राम घाट के पीछे की गली में, सब लोग पीछे से गए और ऐसे राउंड लगाया तो 10 मिनट में ब्राह्मण दोबारा आ गया और तुरंत फिर 5 किलो रबड़ी तैयार थी वो भी खा ली और 11,000 रुपए दक्षिणा भी जेब में रख ली। अब सेठ जी ने पूछा देखो ब्राह्मण साहब आपने रबड़ी भी खा लिया दक्षिणा भी हमने दे दी, लेकिन ये बताओ कि चमत्कार तुम क्या कोई तंत्र मंत्र जानते हो पचाने का? तो 10 किलो रबड़ी हजम कर जाना ये कोई साधारण आदमी के बस की बात नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा देखो रबड़ी हमने खाई दक्षिणा भी आपने दे दी, अगर मैं आपको सच सच बात बता दूं आप दक्षिणा वापस तो नहीं मांगोगे, रबड़ी तो नहीं मांगोगे, पेट में से कहां निकालूंगा, कहीं दक्षिणा आप रिटर्न ना मांगो अपनी। सेठ ने कहा बात कुछ भी है आपने खाई नहीं खाई कैसे खाई, मैंने जो देना था आपको दे दिया, आप सच सच बात बता दीजिए कि 10 किलो रबड़ी कहां गई। तब उस ब्राह्मण ने कहा सेठ से कि हम दो जुड़वा भाई हैं, तो एक दिन में घर में सोया रहता है, एक में घाट पर घूमता हूं दिन भर। तो वो जुड़वा भाई मेरा तैयार खड़ा था, 2-3 दिन से खाया नहीं उसने, तो मैं इधर से रबड़ी खा के गया, मैं जाते ही सो गया और जो सोया था उठ के इधर आ गया। तो ये ब्राह्मणों का धंधा है। और कहां धाम में, धाम में चलता। और बॉम्बे में तो ये विदेशों में तो हमने सुना है इनको मंत्र भी नहीं आता, खाली प्रभुपाद जी का मंत्र बोल करके पूर्णावती कर देते, तमाम विश्व बाधाए किस पिष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदान स्वामी ती नामिने स्वाहा, रखो 100 रुपया ना डॉलर, वहां डॉलर मिलता। और आज का कई ब्राह्मण आपने देखा होगा 5.25 रखो, 11 फिर 21 फिर 51, आप बोलेंगे छुट्टा नहीं है, ठीक है 1,000 का रख दो, इसी में से काटते रहेंगे बात, 1,000 रख दो फिर लिखते, आप लिखते जाओ कितनी बार हमने 11 कहा 51 कहा, वो 1,000 मत रखना मत, 1,000 गए आपके। फिर तो कोई ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः। हम एक बार घाटकोपर में कथा कर रहे थे तो यूपी के कुछ ब्राह्मण हमको पकड़ने के चक्कर में थे, एक यज्ञ हो रहा था वहां, मैंने कहा कली काल में कोई यज्ञ नहीं है, हरिनाम संकीर्तन सबसे बड़ा यज्ञ है। तो जितने लोग बैठे थे मैंने सबके सामने उनकी पोल खोल, तो बाद में बोले अब मेरे को उनकी हिम्मत तो नहीं हुई पकड़ने की, लेकिन कुछ 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 कर रहे थे पीठ पे, ये है वही कैसे हो गया, हम ब्राह्मण हैं, सुपारी पान चबाए जा रहा है, बोले जा रहा, पान नीचे को टपक रहा है, बीड़ी फूकते रहेंगे स्वाहा। सत्यनारायण की कथा में प्रसाद एक हाथ से प्रसाद, ये लो प्रसाद एक हाथ से पिए, दारू पिए आ रहे, छत्री छतरी कहाँ, छतरी किसको कहते हैं, कहीं भी अन्याय हो रहा हो तुरंत भर जाएगा। आजकल कोई है, कोई लफड़े में पड़ना नहीं चाहता, लिखा देंगे नाम सिंह, हम वहां के महाराजा, हमारी वंशज, वो रियासत हमारी है, भले सब किराए पर दे रहे की होगी, अभी बिजली का बिल भरने के लिए पैसा नहीं, हम रियासत के मालिक हैं। छत्री किसको कहते हैं, अर्जुन छत्री हैं। एक बार द्रौपदी के साथ बैठे कुछ बात कर रहे थे, इतने में एक ब्राह्मण आया रक्षा के लिए, और उस समय अर्जुन ने जो उल्लंघन किया युधिष्ठिर महाराज की आज्ञा का, वो अपराध था, लेकिन ब्राह्मण की रक्षा के लिए अर्जुन ने अपराध कबूल कर लिया, उनको छत्री। कौन छत्री है आज ऐसा बताओ ना, कि किसी दुख कोई गरीब आदमी को कोई सता रहा हो और बीच में कोई भिड़ गया, कोई है? जो ड्यूटी पर तैनात है, जिम्मेदार लोग हैं, वो काम करने को तैयार नहीं है, तो जो थोड़ा वर्ण में हो गया सिंह ठाकुर, वो है? पुलिस की, प्रशासन की इतनी जिम्मेदारी, ये भी करते, ये भी लफड़े में नहीं पड़ते। इसलिए जो भगवान का भजन करेगा वो सम्मानित व्यक्ति है। किवा विप्र किवा नासी शूद्र के ने नाय, यही कृष्ण तत्व बेता है, सही गुरु है। मुची होया सुची हो, प्रभुपाद जी लिखते हैं तत्व, मुची होया सुची हो यदि कृष्ण भजे, सुची होया मुची हो यदि कृष्ण तजे। अगर मोची भगवान का भजन करता है तो ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन ब्राह्मण अगर भजन नहीं करता तो तुरंत मोची हो सकता है। मुची मतलब मोची, सुची मतलब ब्राह्मण। इस भजन, इस यहां पर बताया सन्यासी लोग, सन्यासी का जो भी धर्म के मार्ग पर है, विशेषकर भक्त लोगों के लिए संदेश है। अच्छा, मैं बोलता हूं कथा में, मैं ये शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, ये कुछ भी हमारा नहीं, ये माता पिता, ये सब चार दिन के मेहमान, जैसी पिक्चर होती है 3 घंटे की, वैसे हमारी भी 60-70 साल की पिक्चर, बोलने में बहुत अच्छा लगता है ना। अभी मेरे लड़के की तबीयत खराब होगी, तड़क कथा में चोट के भागेगा, हमारा पर्सनल अनुभव रहा है। मैं 20-21 साल से मेडिकल डिपार्टमेंट संभालता हूं, अच्छे अच्छे भक्त लोग, महाराज जनक, विदेही जिनको कहा जा सकता है, बच्ची की तबीयत खराब हुई, प्रभु जी कई दफे तो मैं व्यास आसन में से उठ के जाना पड़ता है, फिर क्या हुआ तबीयत खराब, हमने कहा हम शरीर नहीं है, अरे बाद में बात कर लेंगे प्रभु जी, चलो ना, ये सब बात की बातें हैं। ऐसा एक कथा व्यास बोला, व्यास आसन से प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो पत्नी ने क्या किया, वो इस दिन बिना प्याज लहसुन का खाना बनाया, कथा में बैठी थी, तो कथा व्यास बोला आनंद नहीं आ रहा है प्रसाद खाने में, जो भोजन तुमने बनाया, कहा कि हमने आज प्याज लहसुन नहीं डाला। अरे क्यों नहीं डाला, आज आपने कथा में बताया था सब श्रोताओं को, तो कथा व्यास बोला तुम चौकी की बात को चूल्हे में क्यों लाती है, हमने बात तो चौकी में कह दी, इसका मतलब चूल्हे में ले आएगी उसको, कहने का मतलब क्या, भाषण बड़ा बड़ा देना, मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, क्या रखा है, कष्टम को यम कुतम याद को मे जननी को मे तात इति परिभाव सर्वम सारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचार। भक्त और साधारण आदमी में यही फर्क होता है। देखिए श्री प्रभुपाद जी सन्यासी हैं, प्रभुपाद जी कैसे सन्यास धर्म को निर्वाह करते हैं सुनिए। प्रभुपाद जी एक बार रामानंद सागर के यहां गए, फिल्म बनाया ना भी रामायण, तो रामानंद सागर ने प्रभुपाद जी को 251 रुपए दिया उस वक्त जब प्रभुपाद जी के जेब मदरसे बने थे। प्रभुपाद जी बहुत कठिनाई से लोगों के घरों घरों में जाते थे प्रचार करने, तो कभी कभी उनके पास किराए के लिए भी पैसा नहीं रहता था उस समय की बात है। तो रामानंद सागर ने उनको 251 रुपए दिया। प्रभुपाद जी ने अपनी थैली में से बैक टू गॉड एट भगवत दर्शन मैगजीन एक निकाली। अरे 4 घंटे बाद, अभी 2 घंटे का। तो रामानंद सागर ने प्रभुपाद जी से कहा, देखो स्वामी जी आप एक किताब रखो, क्योंकि हम फिल्में बनाते हैं, रात दिन बिजी रहते हैं, तो मैगजीन पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं। आप 251 रखिए, मैगजीन भी रखिए। प्रभुपाद जी ने कहा अगर आप हमारी मैगजीन लेना नहीं चाहते तो मुझे भी आपका 251 रुपये नहीं चाहिए। जबकि उस समय 251 रुपये का वैल्यू आज के 1000 रुपये के बराबर था। प्रभुपाद जी ने, ये सुभाष सागर उनका लड़का है रामानंद सागर का, वो अभी भी हमारे यहाँ इस्कॉन में आते हैं, तो ये चर्चा वो बताते हैं प्रभुपाद जी कैसे संत थे। प्रभुपाद जी ने कहा जब तुम हमारी संपत्ति नहीं लेना चाहते तो हम तुम्हारी भौतिक नश्वर संपत्ति क्यों लें? मैं तुमको ऐसी संपत्ति दे रहा हूं, अगर तू पढ़ लेगा तेरा करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, परलोक सुधर जाएगा, और तुमने हमको 251 दिया, ये 2 दिन का भी हमारा खर्चा नहीं। मैं तुमको 2 दिन के खर्चे में 1000 जन्मों का खर्चा दे रहा हूं, तुम लेने को तैयार नहीं। सन्यासी हैदराबाद में प्रभुपाद जी का लड़का प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आता था। ये कई घटनाएं ऐसी हैं। तो प्रभुपाद जी के कुछ पैसे की जरूरत थी। प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने कहा नहीं नहीं प्रभुपाद, ये कृष्ण का पैसा है, अपने लड़के को पैसा नहीं दिया। प्रभुपाद जी ने अपने बच्चों से भी कहा अगर आपको, मेरे बच्चे कौन हैं जिन्होंने कृष्ण भक्ति को स्वीकार किया है, ये मेरी औलाद है, जो कृष्ण भक्ति स्वीकार नहीं करता, शरणागत नहीं है, वो भले शरीर से उससे हमारा संबंध हो सकता है लेकिन वास्तव में उससे हमारा कोई संबंध। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग में एक बार श्रीनाथ जी की पूजा करने जा रहे थे, वल्लभाचार्य जी खुद उपासना करते थे भगवान श्रीनाथ जी की, तो उनको रास्ते में एक व्यापारी मिला, तो व्यापारी ने प्रणाम किया वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य ने कहा कौन हो तुम? कहा प्रभु का सेवक, आपका दास। गले से लगाया वल्लभाचार्य। पूजा करने जा रहे थे, पूजा करने जब कोई व्यक्ति पुजारी जाता है उसमें उसको किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, तो वल्लभाचार्य ने उसका बदन टच किया, आलिंगन किया, और फिर भी पूजा के लिए चले गए बिना स्नान किए। दूसरे दिन की घटना है कि वल्लभाचार्य का भतीजा रास्ता में मिला, उनके भाई का लड़का, उसने प्रणाम किया। वो अपने भावावेश में थे, पूछा कौन हो तुम? कहा मैं आपका भांजा हो ना, भतीजा। ओह स्नान करना पड़ेगा। तुरंत वापस गए, स्नान किया, तब पूजा की। तब भांजे ने पूछा कल आपको एक मारवाड़ी मिला, उसे गले मिल रहे थे आप, और मैं आपका सगा भांजा, और मेरे को देखते ही स्नान करने चले गए। वल्लभाचार्य ने कहा तुमने शरीर का संबंध मुझसे बताया, जो कल व्यापारी हमको मिला था उसने कृष्ण संबंध मुझसे बताया, इसलिए वो मेरा सगा संबंधी है, तू नहीं। नकार दिया अपने भतीजे को, भांजे को नकार। इसे जो महापुरुष लोग होते हैं कभी कभी संसार में सब क्रियाएं करते हैं लेकिन करते हुए भी उनसे अलग। प्रभुपाद जी इसके साक्षात उदाहरण है। भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट जज हैं उड़ीसा के, एक योगी, बड़े बड़े बाल लग के, और भगवान कृष्ण का अवतार अपने आप को मानता है, लोगों को गुमराह कर रहा है, स्त्रियों से, महिलाओं से अपनी पूजा कराता है। भक्त विनोद ठाकुर ने कहा कि गलत बात है अपने आप को भगवान मानना, और अपनी पूजा कराना गलत बात है, लेकिन उसकी चलती थी। जैसे आजकल एक बाबा की चलती है, बड़े बाल वाले, क्या दिखाता है, चमत्कार, क्या सोने की चेन, और एक दो ही क्यों दिखाते हो, 10-20 हजार निकालो ना चेन। इतनी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है दहेज के बिना, दे देंगे उनको, 2-3 चेन निकालेगा। मेयर रोड में भी घूमते हैं कई साधु लोग। एक बार एक साधु मिला मुझे मेयर रोड स्टेशन पे, बोला इधर आओ। उसने एक चावल का दाना हमारी हथेली में रखा, बोला मुट्ठी बंद करो, हमने बंद किया, खोलो, खोल दिया तो 5 दाने हो गए। बोला मैं विशाख वहां जा रहा हूँ, रामेश्वरम, 200 रुपये दो ना। तो मैंने कहा जब तुम एक दाने का 5 दाना निकाल सकता है तो एक आध बोरी और निकाल दो, कोलम राइस बहुत महंगा हो गया, कोलम निकाल दो, पुलाव बना के खाएंगे। उसने कहा देखिए ये कोई चमत्कार नहीं है, हमारे गुरु जी ने मेरा पेट भरने के लिए हमको इतनी विद्या सिखाई, तो इससे मेरा गुजारा हो जाता है, मैं 5 दाने से ऊपर नहीं निकल सकता। तो कई लोग योगियों के चक्कर में, इसका इस पर श्लोक है योगी का, ये 37 नंबर है ना, 34-35 नंबर में योगी के बारे में भी कहा है। तो आजकल लोग योगियों के चक्कर में भी, योगी को भगवान मानना, लेकिन योगेश्वर कौन है? योगी अगर भगवान तो योगेश्वर का मतलब क्या हुआ? जो योगियों के भी ईश्वर है वो भगवान है, योगी भगवान है। इसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा बाल काट दो इसके। अभी भी एक महात्मा है, कोई अपना गला नहीं पकड़े तो मैं बोल देता हूं, कई लोग उनके भी लोग बीच कथाओं में बैठे रहते, हम बाहर जाएंगे तो पकड़ देगा, कैसे कैसे बोला हमारे भगवान के बारे। ये चमत्कार किसका है? बालों का। आप मुंडन कराओ फिर चेन निकालने के लिए बोलो, एक कील भी अगर निकाल दे तो। आप उस व्यक्ति को कहो कि जैसे हम टकला हैं वैसे टकला होके दिखाओ, फिर तुम एक चेन क्या है खाली कील निकाल के दिखाओ, मान जाए। ये बालों में चमत्कार होता है, कुछ ऐसी सिद्धि होती। भक्त मनोहर ठाकुर ने योगी के सारे बाल कटवा दिए, और उस योगी के योग के प्रताप से भक्ति विनोद ठाकुर का पूरा परिवार ज्वर से पीड़ित हो गया। इतना ज्वर, कई डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, दवाइयां ली, ट्रीटमेंट लिया, कोई फायदा नहीं। पत्नी ने कहा आप उस योगी को छोड़ो, हम सब मर जाएंगे। हम आप क्या चाहते हो कि हम सब मर जाएं? भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा तुम सब मर जाओ लेकिन मैं उसको भगवान मानने को तैयार नहीं। इसको कहते हैं सन्यासी। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अक्सर कहा करते थे महापुरुषों का एक लक्षण है क्या, हमेशा अपने आप को गिरा हुआ बताएंगे। सूरदास जी के पद आपने पढ़े होंगे, उसमें कई पद ऐसे हैं, सूरदास जी लिखते हैं मोसम कौन कुटिल खल कामी, हे प्रभु मैं नंबर एक का कामी, कुटिल खल, सूरदास जी खल हैं, लेकिन अपने को। व्यक्ति जितनी ऊपरी स्थिति में होगा, जैसे पेड़ों फलों से लदा हुआ पेड़ झुक जाता है, वैसे प्रेमा भक्ति से लदा हुआ जीव भक्त भी झुक जाता है। शबरी क्या बोली भगवान को, अधम ते अधम अधम अति नारी, अधम अधम अधम, 10 बार अधम का, फिर अपना नंबर लगाया, तीन पर मैं मति मंदगारी, उनसे भी गिरी हुई हूं। और जबकि सबरी की क्या है, चरम सीमा पर है भक्ति की, और अपना परिचय कैसे दे रही है? जब भगवान ने दर्शन दिया लाखों साल बाद, भाग गई आश्रम से। जैसे प्रभु ने प्रवेश किया आश्रम के अंदर लक्ष्मण जी के साथ, और सबरी ने देखा प्रभु मेरे आश्रम के अंदर आए, आश्रम से ही भाग गई। इसको कहते हैं भक्ति दीनता। ये नहीं मेरे यहां मालूम है तुमको भगवान हमारे यहां आए हैं, भगवान तो दूर की बात, चीफ मिनिस्टर मेरे घर में चाय पिया, अगर प्रधानमंत्री हो गया तो जीने ही नहीं देगा किसी। आजकल कई व्यापारिक घराने हैं, प्रतिष्ठान, महात्मा गांधी जी हमारे यहां ठहरते थे, मतलब हमारे यहां ठहरते थे बहुत बड़ी बात है, अगर उनके यहां मर गए और भी बड़ी बात, हमारे यहां मरे, इतना बड़ा नेता हमारे यहां। और शबरी के यहां साक्षात त्रिलोकीनाथ आए हैं और भाग गई आश्रम से, भगवान पकड़ के लाया इसको, भगवान ने पीछा किया शबरी का, दंडवत की गिर गई नीचे, भगवान ने अपने हाथ से उठाया। ये दिन था तो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज कहते मैं बहुत ही पापी हूं, मैं जब मर जाऊं तो मेरे शरीर को रस्सियों से बांध करके नवदीप की गलियों में घसटते हुए ले जाना और कुत्तों को खिला देना। ऐसा कहते कौन? हमारे आचार्य गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर के शिष्य और भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के गुरु महाराज। तो एक दिन उनका शरीर छूट गया, सब सन्यासियों ने कहा हमारे गुरु जी की इच्छा थी कि हम इनको रस्सी से बांधें, रोड में घसीटें और फिर कुत्तों को खिलाएं। सब सन्यासी रस्सी लेके तैयार हो गए। इतने में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का आगमन हुआ, कहा कि क्या कर रहे हो? गुरु जी की इच्छा पूरी कर रहे हैं, गुरु जी हमारे ऐसा चाहते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा ओ तुमको गुरु का मतलब एक एक बात सब मालूम ना, सब मालूम हमको सन्यासी, हम सन्यासी लोग सब गुरु जी के मन की बात जानते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा तुम अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करो, उनकी इच्छा भी पूरी करो, लेकिन मुझे एक ही बात बताओ कि तुम सब सन्यासी हो। तो किसी ने कहा हैं हम 30 साल से, कोई बोला 25 से, कोई बोला 20 साल से, कोई बोला 12 साल से, कोई बोला 5 साल से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा अगर तुम सचमुच में सन्यासी हो, अगर तुमने सन्यास धर्म का निर्वाह किया है तो गौर कृष्णदास महाराज आपके गुरु जी की जो इच्छा थी आप करो, लेकिन अगर तुम सन्यासी नहीं हुए, खाली बाहर का कपड़ा पहन के सन्यासी हुए, तो जैसे ही तुम गुरु महाराज को घसीटोगे तुम्हारा सर फट जाएगा। तो सब पीछे तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने पूछा कितने साल से सन्यासी? 30। सचमुच में 30 साल से खाली कपड़ा पहना है या सन्यासी? भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा तुम सब सन्यासियों में चाहे कोई 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से सन्यासी है, मैं आपसे पूछता हूं कि इतने सालों में अगर कोई आप 1 साल भी सन्यासी रहे हो तो बताओ। 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 15 दिन, 1 हफ्ता, 1 दिन, कल रात कोई सन्यासी रहा बताओ ना। सन्यासी का मतलब क्या? जिसने कभी किसी महिला का, स्त्री का चिंतन न किया उसको सन्यासी कहते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कल रात, छोड़ो 50 साल की बात, कल रात भी अगर 1 रात भी कोई सन्यासी रहा है तो करो काम। कोई भी आगे नहीं आया। तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा जब हम अपने आश्रम का निर्वाह नहीं कर रहे हैं तो गुरु जी की इच्छा कैसे समझ गए भाई? तुलसी आरती गाते क्या है? तुलसी आरती मोरा यही अभिलाष, विलास कुंजे दियो वास, ये तो सुबह की आरती हुई, मन में क्या है, अमेरिका को दियो वास, वीजा लग जाए। आरती में अभिलाष विलास कुंजी दियो वास नये नये हेरी वो सदा युगल रूप रस। और मन में क्या अभिलाषा है, 8 बजे पासपोर्ट ऑफिस में जाना, लग जाए वीजा तो। इसको कहते हैं शालिग्राम से बादाम फोड़ के खाना। राजस्थान में एक साधु ने एक छोटा सा मंदिर बनाया, 2-4 शालिग्राम रख दिए, भगवान नरसिंह, भगवान कृष्ण, राधा, यही है सब, दामोदर कुंड से लेके आया, सपने में आए थे सब गुजरात वहां के व्यापारी लोग, काजू किशमिश बादाम पिस्ता। तो शाम को जब सब चले जाते दरवाजा बंद करके, उन्हीं शालिग्राम से बादाम फोड़ के खाता था। खा खा के लाल हो गया एकदम, और लाल भजन है नहीं, लाल हो गया शादी करने की इच्छा। शालिग्राम की कृपा हुई, गुरुजी के पास गया, ऐसे मन में लालसा, गुरुजी ने कहा बहुत बादाम खाए, बंद करो अभी बादाम खाना, अभी तुम नीम के पत्तों की पकौड़ी खाया करो, जितने दिन बादाम खाए इतने दिन पकौड़ी खाओ तब ठीक ठाक होगा। चैतन्य महाप्रभु भी सन्यासी हैं, 24 साल की उम्र में चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लिया। प्रबोधानंद सरस्वती पाद एक सन्यासी हैं मायावादी, वो चैतन्य महाप्रभु को कटाक्ष करते हैं हमेशा, कुछ ना कुछ उनकी त्रुटि निकलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहते हैं, और जगन्नाथ जी का जो दोपहर का राजभोग आता उसको खाते थे। अब सन्यासियों को ये सब घी तला हुआ पकौड़ा भजिया खाना मना है, क्योंकि इससे काम वासना बढ़ती है, तामसी बढ़ती होती, और चैतन्य महाप्रभु सब खाते थे छप्पन भोग, क्योंकि तो भगवान है। अब प्रबोधानंद सरस्वती देखता है, देखो सन्यासी और छप्पन भोग रबड़ी मलाई सब खा जाता है, काय का सन्यासी, तो लिखा काय के सन्यासी तुम, छप्पन भोग खाते हो तला हुआ सब भजिया पकौड़ी समोसा खा जाते। सार्वभौम भट्टाचार्य ने एक दिन चैतन्य महाप्रभु से कहा कि मैं इसको ठीक करके आता हूं, ये बहुत आपकी निंदा करता है। चैतन्य महाप्रभु बोले क्यों उसके मुख लगते हो, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चुपके से चैतन्य महाप्रभु से छिप के प्रबोधानंद सरस्वती को एक बार एक खत लिखा, उसका जवाब। और जवाब में लिखा सिंहो बलि दुरदशु कर मांस भोगी, श्लोक भी भूल जाते हैं ना कहां से, बड़ी देर से आया। सिंहो बलि दुरदशु कर मांस भोगी सम्मत शरण कुरुते रति एक बारम, कि तुम जिनको जिन सन्यासी की तुम निंदा कर रहे, तुम जानते हो सन्यासी कौन है, ये साक्षात हरि त्रिलोकीनाथ हैं। उदाहरण दिया सिंह से, इसलिए गौड़ी वैश्यों का जो क्या है लोगों को हिंदी में क्या कहते हैं लोगों, हमारा लोगो क्या है, सिंह हाथी ज्ञान का प्रतीक है, सिंह भक्ति का प्रतीक है। आप कहीं भी गौड़ी मठ में जाएंगे वृंदावन नवदीप में, तो उनके गेट पर आपको शेर का मिलेगा चिन्ह, देखा आपने, और कभी कभी शेर हाथी के ऊपर अटैक कर रहा है, मत में ज्ञान के ऊपर अटैक कर रही है भक्त, ऐसा लोगों दिखा है। चैतन्य महाप्रभु सिंह जैसे हैं, तो उदाहरण दिया सार्वभौम भट्टाचार्य ने, एक कबूतर हर क्षण दाने खाता है, चुकता रहता है, और प्रति क्षण जितने क्षण दाने खाएगा उतने क्षण अपनी पत्नी का सहवास करता है, देखा आपने, एक दाना खाए मतलब दिन भर खाते रहेगा सहवास करते रहे। लेकिन शेर रोज मांस खाता है, लेकिन सिर्फ साल में एक बार अपनी पत्नी का सहवास करता है। तो प्रबोधानंद सरस्वती पाद से कहा, चैतन्य महाप्रभु ऐसे सन्यासी नहीं, वो शेर जैसे सन्यासी हैं। चाहे वो 56 भोग खाएं चाहे कुछ, लेकिन वो हमेशा सन्यासी रहेंगे। तुम थोड़ा भी कुछ खा लेगा, मतलब दाना भी खा लेगा, मतलब तुम पानी पी कर सूखी रोटी भी खाएगा, फिर भी तेरा मन खराब हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु भी ऐसे सन्यासी हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय है, इनके जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, ये लोग अयोध्या से आए थे। आप कभी गांधीनगर जाइए अहमदाबाद में, जो स्वामीनारायण का सेंटर है, तो उसके अच्छे अंदर डायरोमा दिखाए हैं बहुत सारे। तो उसमें एक डायरोमा दिखाया है कि एक सन्यासी, पुराने जमाने में लाइटर या माचिस नहीं होती थी, लोग पत्थर को रगड़ के आग जलाते और एक के घर में आग जल गई तो सभी गांव वाले ले जाते। तो स्वामीनारायण संप्रदाय के जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जो संत लोग हैं, वो गृहस्थी के घर से आग लेते थे, सन्यासी लोग। तो उन्होंने क्या किया, अपनी कुटिया से उस गृहस्थ की घर की तरफ एक छेद बनाया गोल, क्योंकि सन्यासियों को स्त्री का दर्शन नहीं करना चाहिए। और स्वामीनारायण में अभी भी, स्वामीनारायण उनका एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत, कि वो शायद महिलाओं से, लेडी लोगों से बात नहीं करते, जेंट्स लोग ही बात करते। तो उन्होंने होल बनाया, तो होल में से वो गृहस्थ की पत्नी उनको आग देती और होल में से आग ले लेता। तो एक दिन उनके गुरुजी ने देखा कि कहीं ये होल में से आग लेने की से कहीं सन्यासी के हृदय में तो होल नहीं हो जाएगा। इसे सन्यासी ने कहा, कोई जरूरत नहीं, आग की होल बंद करो जल्दी। छोटा हरिदास हमारे संप्रदाय के, छोटा हरिदास ने क्या क्या गलती की, एक बुढ़िया के घर गए, बासमती चावल लेके आ गए और चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि चावल कहां से लाए तुम। कहा कि महिला के घर से, एकदम वृद्ध महिला, दांत नहीं, सुन नहीं सकती, देखा नहीं जाता, शरीर एकदम शिथिल हो गया है, ऐसी महिला के हाथ से चावल लेके आए। चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत अपने अखाड़े से निकाल दिया। सब भक्तों ने समझाया, ऐसा मत करो महाप्रभु, वो तो वृद्ध महिला और उन्होंने क्या अपराध किया, और ऐसा भी नहीं कि उनका कोई मन ऐसा खराब, ऐसी कोई परिस्थिति थी नहीं। महाप्रभु बोले, नहीं, ये सन्यासी होके स्त्री के हाथ से चावल लेके क्यों आया। निष्कासित कर दिया, ग्रुप से निकाल दिया। चैतन्य महाप्रभु का विरह सहन नहीं हुआ और समुद्र में छलांग लगा के आत्महत्या कर दी। और वही हरिदास गंधर्व रूप में चैतन्य महाप्रभु को भजन सुनाते हैं। आपने एक पिक्चर देखी है, चैतन्य महाप्रभु समुद्र के किनारे बैठे एक टीला पर, एक गंधर्व पंखों में उनको भजन सुना रहे, वो यही सन्यासी है छोटा हरिदास। ये कड़क नियम, लेकिन जो जो प्रवृत्ति बदल समय के अनुसार, जैसे बोले भक्ति सिद्धांत सरस्वती के भक्त 64 माला जप का प्रावधान था, प्रभुपाद जी ने 16 किया, क्योंकि प्रभुपाद जी आचार्य हैं, आचार्य को अधिकार होता है कि कैसे समाज का, जीवों का कल्याण हो, तो परिवेश को देख करके वो लोग कभी कभी फिर बदल भी करते हैं। प्रभुपाद जी ने, कोई एक सन्यासी ने पूछा, अगर कोई सन्यासी किसी स्त्री का चिंतन करे क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी ने कहा उसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और जो पूछने के लिए आया था, पता लगा कि दूसरे दिन वो मरा हुआ है, आत्महत्या। प्रभुपाद जी ने सब सन्यासियों को बुलाया, प्रभुपाद जी ने विचार किया, उसने तो पूछने की हिम्मत की, हो सकता है सबके मन में थोड़ा थोड़ा। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में कहा, अगर किसी सन्यासी का पतन भी हो जाए तो वो ग्रस्त बन करके दूसरा आश्रम धारण करके भगवान की सेवा जारी रखे, छोड़े नहीं। इसे कहीं ऐसे भगवान की परीक्षा तो प्रभुपाद जी की सेवा भी करते हैं। हमको बोलने का अधिकार नहीं, मैंने बोल दिया दूसरे की बात, हमारा खुद का ठिकाना नहीं है। कुल मिला के बात यह है, भगवान का भजन करना चाहिए। साधु संग सर्व शास्त्री कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। भगवान के भक्तों का संग 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 भक्त किसको कहते हैं? जो भगवान का भजन करते हैं। वैसे तो हमने तो ये भी अनुभव किया है, भगवान के भजन में आप ढोंगबाजी भी करोगे फिर भी फायदा ही है। हम अपनी बात आपको बताएं, हम 75% ढोंग करते हैं, सही बात बता रहा हूं। हम 20 साल हो गया इस्कॉन में, अभी भी जिसको भक्ति कहते हैं हमने नहीं किया अभी तक। 20-25% धक्का दे दे के, वो भी भक्तों के सहारे से 75% हमारी भक्ति आप लगाओ सब ढोंग की है। और हमारे इतने ठाटबाट है राजा महाराजा उसके भी नहीं। हम कभी कभी विचार करते हैं, कभी कभी हम असली भक्ति करने से डरते भी हैं कि जब नकली भक्ति में इतना ऐशो आराम, कहीं असली में पता नहीं क्या हो जाएगा। भगवान की भक्ति में कैसे भी, इसका मतलब ये नहीं कि वैसे ही रहे, कैसे भी भगवान के शरणागत आप पड़े रहे, फायदा ही फायदा। नेहा विक्रम नाशोस्ती प्रतिवायो न विद्यते स्वल्प मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। लाभ 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 लाभ। आप मजाक में भी कोई बात बोल दीजिए भगवान के बारे में, ऐसे ही सही हो जाएगी। लेकिन कोई सांसारिक बात को कितनी गंभीरता से बोलिए, उसकी रजिस्ट्री कराइए, 10 गवाह भी रखिए, फेल हो जाएगी। भगवान के सामने कैसे भी आप रहिए, एक न एक दिन, वाल्मीकि कथा आती है ना डाकू की, मरा मरा जपा उल्टा नाम जपा हरि जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से, तो अगर कोई उल्टा नाम जपे, गुरु द्वारा दीक्षित हो, भक्तों के शरणागत, उनके संग हो, तो उसका तो क्या कहना। कैसे कई भक्त हुए, कई मुस्लिम भक्त हुए हैं ऐसे वृंदावन में, अब्दुल रहीम खान खाना वैसे गए थे दर्शन करने बांके बिहारी, देखा वहीं रह गए। मुस्लिम भक्त ने पद लिखा है, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। जो पशु हो तो बसेरु करो, जो खग हो तो बसेरु करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। मुसलमान कभी थोड़ा सा दर्शन देखने के लिए गए, उत्ते में ही वृंदावनवासी हो गए, अब्दुल रहीम खान खाना रसखान कभी कहते हैं। तो भगवान की भक्ति में कैसे भी, कोई व्यक्ति किसी पहाड़ को चढ़ रहा है और अचानक गिर गया, तो पहाड़ से जो व्यक्ति गिरता है तो उसकी हड्डी पसली टूट जाती है। कोई व्यक्ति को तैरना नहीं आता, नदी में कूद गया, पानी का काम बहाना है, इसको तैरना नहीं आता बचा लो, इसको तैरना आता बहा लो, ऐसा है। वैसे भगवान की शरणागति, भगवान की सेवा, भगवान का नाम, उनकी कथा हमेशा जीव का कल्याण करती है। कैसे भी आप उसको, अगर सीधी विधि से हो जाए तो ठीक, अरे कितना 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 उसमें भगवान मिल जाते, कितना में कितना मिलेगा ये सब। कृष्णा में कृष्ण मिलेंगे। द्रौपदी ने भगवान से कहा, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। दुशासन साड़ी खींच रहा था। द्रौपदी ने एक दिन पूछा, उतनी साड़ी क्यों खींची मेरी, जिसके ऊपर आपकी कृपा होती है, एक इंच भी नहीं साड़ी नहीं खींचना चाहिए था हमारी, मुझे थोड़ा भी दुख नहीं होना चाहिए था, फिर भी तो दुशासन ने कई गज साड़ी हमारी खींच दी, आप बाद में आए साड़ी बन गए, ये तो बात की बात। भगवान ने कहा, किस नाम से हमको पुकारा? कहा द्वारिकाधीश। तो भगवान ने कहा, द्वारिकाधीश का मतलब द्वारिका का राजा, और द्वारिका से हस्तिनापुर दिल्ली आने में टाइम नहीं लगता क्या? अगर तुम द्वारिकाधीश की जगह बोल देती, हे कण कण में व्याप्त, हे जगदीश्वर, सबके हृदय में जो परमात्मा रूप में स्थित है, मेरी रक्षा करे, तुरंत उधर से प्रकट हो, भगवान तो उधर ही बैठे हुए थे। लेकिन एक दृष्टांत शिक्षा पेश कर रहे। वैसे भी भगवान का नामोच्चारण विधि से, हरे कृष्णा 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 नाम द्रौपदी का है, तो हरे कृष्णा कृष्णा कहेंगे तो द्रौपदी जी आ जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और जिनके मुंह में दांत नहीं, बोलो हरे कितना 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 हरे हरे, जिनके मुंह में दांत नहीं। मतलब क्या, जब दांत ठीक ठाक है तब से ही जब शुरू कर देना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि नहीं, अभी सब शटल बच्चों को ठीक ठाक करके फिर, तब तक तो दांत निकल जाएंगे। तो बिना दांत के चांटिंग करने से कृष्णा शब्द नहीं आता। कितना 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 जिंदगी भर कितना कितना कितना। इसलिए जब तक शरीर सुदृढ़ है, मजबूत है, दांत ठीक ठाक है, आवाज उच्चारण सही निकलता है, तब से भगवान का नाम शुरू कर। साढ़े दस तक बोल सकते हैं? अच्छा, आधा घंटा और। तो भगवान का नाम संकीर्तन चार योग हैं, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतोमक है, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि कीर्तनात्। सत्युग में लोग तपस्या करते हैं, त्रेता में यज्ञ करते हैं, द्वापर में दान पुण्य भगवान का दर्शन करते हैं, कलि काल में भगवान का नाम संकीर्तन श्रेष्ठ बताया। क्यों? उम्र कम है, प्रायण अल्पायेषु सभ्य कला वस्मिन युगे जना, मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या ही उपद्रता। हमारी उम्र कम है, एवरेज लगाओ 80 साल का, 24 घंटे का रात दिन होता है, रात को सो जाते हैं, ठीक अदा करो 40 साल। किनकी 40 साल? जो दिन में नहीं सोते। ये नहीं कि दिन में खा के भी जरा थोड़ा सा कमर सीधी कर लेता हूं, उसका 75% गया, तो 40 का भी अदा करो, 20 साल रहे उसके जो दिन में सोते हैं, सिर्फ दिन में मत सोएगा। अब 20 साल में काम कितने करने, 40 साल में काम कितने करने, पढ़ना भी है, एमटेक बीटेक सब करना है, बीच में फेल नहीं हुए तो स्कूल भी जाना है, रोज ठीक ढंग से चले गए, एक्सीडेंट नहीं हुआ तो, बारिश में नहीं फंसे तो, कितनी झंझट है। मुश्किल से 4-5 साल की हमारी जिंदगी है कुल। एक मक्खी की जिंदगी कितनी होती है? 6 या 7 दिन का मक्खी का लाइफ होता है। आज मक्खी पैदा हुई, दोपहर तक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा उसका, शाम तक ग्रेजुएशन हो गया, दूसरे दिन शादी, 6-7 दिन में तो नाती पोते पड़ पोते सब हो जाते। वैसे देवताओं की नजर में हमारी उम्र कैसी है? मक्खी की उम्र जैसी। और ब्रह्मा जी के सामने हमारी कोई गिनती? कोई गिनती। सहस्त्र युग पर्यंत यो ब्राह्मण विदु जना, ब्रह्मा जी की उम्र कितनी? 100 साल। हमारी भी एवरेज 100 साल। सतयुग में थी 1,00,000 साल, फिर त्रेता में 1 0 कम कर दिया 10,000, फिर द्वापर में फिर 1 0 कम 1,000, और कलयुग में 1 0 और कम 100 साल, 1-1 0 कम होता जाता है। सौ साल एवरेज है कली काल में, लेकिन कौन व्यक्ति कोई है 100 साल? और शरीर देखो लोगों का 30-35 साल में बूढ़े हो जाते हैं, 10-15 साल के बच्चों के बाल सफेद, छोटे बच्चों को डायबिटीज, हार्ट का कैंसर, 6 महीने के बच्चे को कैंसर। तो 100 साल भी बहुत बड़ी बात, 100 साल हो गया मतलब गिनीज बुक में नाम आता है, नाम मिलता है उसका, कोई ठिकाना नहीं। तो हम लोग तपस्या नहीं कर सकते, उम्र कम है, उसके लिए लाखों साल की उम्र चाहिए। विश्वामित्र जी ने किया 60,000 साल और फिर भी सक्सेस नहीं हुए। यज्ञ करने के लिए शुद्ध सामग्री, सब शुद्ध वातावरण चाहिए। कुछ शुद्ध नहीं है, शुद्ध दूध का अभिषेक करते हैं भगवान का दूध से, और पता लगा कि जो थैली में दूध है वो रात को गटर का पानी भरा हुआ। बॉम्बे में शहरों, बड़े बड़े शहरों में 50% तो नहीं कहा जाएगा, 30% दूध नकली आता है। आप जो दूध पीते हैं, जरूरी नहीं है कि गाय या भैंस का ही हो, गटर का पानी भी हो सकता है सफेद। कई लोग अभी पकड़े गए, कई लोग रात को थैली भर रहे थे। महानंदा डेरी दूध सुबह गर्म किया, पी रहे हैं। रोज एक गिलास दूध पीता हूं, क्या पीता हूं, गटर का पानी पीता हूं एक गिलास। आजकल तो फिर भी पानी बारिश की वजह से 50% ठीक मिलेगा, जब बारिश नहीं, गटर का पानी जानते हो क्या होता है, सब गंदा। घी चाहिए यज्ञ करने के लिए, शुद्ध नहीं। पूरा कनस्तर घी का लाओ, कढ़ाई में गरम करो, अपना मुंडी उसके अंदर डालो, खुशबू है। पहले गांव में घी का तड़का लगाते थे, पूरे गांव में खुशबू, सब लोग बोलते थे कितने दिमाग चढ़ गए, रोज घी खाता है। बासमती चावल देखो आजकल, कहीं बासमती का खुशबू है? कोई भी चीज असली नहीं। हमने तो ये देखा पॉइजन भी असली नहीं है उपलब्ध। कई पेशेंट हमारे पास आए पॉइजन पी के आते हैं, बोले मरे नहीं, कुछ करो, बीच में अटक जाते हैं, पॉइजन भी मिलावट। मैं नासिक जेल में जाता हूं प्रचार करने, कैदी भी नकली देखे मैंने वहां। हमने कहां से आए, बोले हमारे सेठ की सजा हम भुगत रहे, तनख्वाह मिलती है। मैं नासिक जेल में जाता हूँ हर साल, 5,000 कैदी है वहां, और येरवड़ा में जाता हूँ पूना, तो कई कैदियों को मैं जानता हूँ, बोले हमने कुछ नहीं किया, हमारे सेठ जी है ना, अपने घर में चली जाती है तनख्वाह, हाजिरी लगाते, कैदी भी नकली, आदमी भी नकली मिलेगा चलता फिरता। एक बार एक बहुत बड़े कमिश्नर हैं मेरे अच्छे पहचान के हैं, वो बीमार हो गया अचानक, तो अचानक फोन आया कि वो बॉम्बे हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट है। मैं तुरंत देखने उनको गया, मैंने पूरा वार्ड ढूंढ मारा लेकिन मेरे को आदमी नहीं मिला। अरे हमने कहा नाम तो यही है, सब यही है, पोस्ट भी यही है, लेकिन ये वाला व्यक्ति कहाँ चला गया? तो हमने बहुत देर ढूंढा, सिस्टर को पूछा, मैंने कहा नाम ठीक है, सब ठीक है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये वो नहीं है। उसने कहा यही है वो। हमने बाद में देखा कि उनके बाल नकली निकाल दिए, दांत नकली निकाल के अलग रखे हुए थे, यानी आधा ढांचा उनका निकाल करके बेड के सामने रखा हुआ था। मुझे बाद में पता चला इसका सब नकली, उसका दांत नकली, बाल चमड़ी भी नकली उसके बाहर का निकाल के रखा हुआ, यानी चलते फिरते आदमी भी असली नहीं मिलेंगे। अब सुबह कुछ रात को पता ही नहीं लगेगा, इसलिए यज्ञ करना मना है। कृते यध्याय तो विष्णु ते तायाम यजतो मखे। कौन सा यज्ञ करेंगे? कली काल का युग धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन। हाँ यज्ञ थोड़ा बहुत कर दिया, नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह का, लक्ष्मी नारायण का, लेकिन महामंत्र जरूर होना चाहिए बाद में पूर्णाहुति के बाद। श्लोक के उच्चारण में जो त्रुटि रह जाती है वो महामंत्र से पूरी हो जाती है। एक श्लोक का स्पष्ट उच्चारण करने के लिए 18 साल का कोर्स होता है, संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी बनारस। वो तो कौन आदमी ऐसा जो खाली 18 साल उच्चारण करने सीखने जाएगा, कोई है? चल रहा है, हम ही भागवत कथा करते हैं, कुछ जरूरी थोड़ी है ठीक ठाक श्लोक हो रहे हैं, एक ही लाइन सही आधा ही सही। प्लस पॉइंट क्या है इसका कि सब करने के बाद हर एक किसी महामंत्र करते हैं इसलिए अपनी गड़बड़ी से बच जाते हैं। जो लास्ट में कीर्तन हम कर देते हैं वो जो भी अपराध हमने किए इधर उधर गुमराह किया लोगों को वो थोड़ा उससे पाप से मुक्त हो जाएंगे। इससे हरि नाम कीर्तन जरूरी है। मैं अपनी बात आपको बताऊंगा, हमको कोई 18,000 श्लोक याद थोड़ी, 18 भी याद नहीं हमको। अभी हम अपने घर में बैठे हैं इस्कॉन में, तो सही बताने क्या अर्थ है, हमको गीता का मुश्किल से 10 श्लोक याद होगा, लेकिन हम सब बड़े बड़े महामंडलेश्वर शंकराचार्य बैठे रहते हैं हमारी कथा। अपने को कोई पूछता भी नहीं क्योंकि पहले ही अनाउंसमेंट हो जाता है कि प्रभु जी बहुत प्रकांड विद्वान है और 18 साल की उम्र में आ गए, 20 साल तक उन्होंने भागवत घोटा, 20 दिन नहीं घोटा अभी तक। मैं अभी जो क्लास दे रहा हूँ बनवाली हमको बोला था वो अच्छे तरह से पढ़ लेना श्लोक, मेरे पास टाइम ही नहीं, मैंने अभी अभी देखा श्लोक, मैं पढ़ रहा था उधर देख रहा था ना, मैं बोल गया ऐसे। तो अपना जब काम ऐसे चल रहा है तो इतना गडर में जाने की क्या जरूरत है। प्लस पॉइंट क्या है, हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र, ये महामंत्र अपने को बचा देता है, पकड़ में आ जाते हैं लेकिन बचा देता है। अपना आदमी छोड़ दो, छोड़ दो। इसलिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है हरि नाम संकीर्तन, भगवान का नाम कीर्तन। और कीर्तन क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कलौ तद हरि कीर्तना, द्वापर में लोग यज्ञ दान वगैरह करते हैं, आज भी लोग दान पुण्य करते हैं, लेकिन अक्सर कड़की चल रही है, मार्केट बहुत डाउन हो रहा है। किसी को डोनेशन के लिए बोलोगे ना, मार्केट बहुत डाउन, तो सुबह का नाश्ता भी बंद कर दिया होगा, मार्केट बहुत डाउन है ना, सुबह का नाश्ता मत खाओ, चार चपाती खाते थे दो ही खाओ, मार्केट बहुत डाउन चल रहा है। अपने डिपार्टमेंट में कोई कमी नहीं है खाने पीने ब्रेकफास्ट लंच डिनर में, दूसरे को दान धर्म करने कड़की चल रही है, बहुत कड़की। मंदिर में दर्शन आने के लिए बोलते हैं इस्कॉन के भक्त, संडे को आओ, कैसे आए प्रभु जी, 7 दिन 6 दिन काम, 7 संडे एक छुट्टी खोल, उस दिन कपड़े धोने पड़ते हैं, सब रूम सफाई करो, राशन ये सब। तो आप लोग सब भाग्यशाली हो, आपको कपड़े नहीं धोने थे ना, कुछ भी धोना हो लेकिन हफ्ते में एक दिन जरूर। भगवान के भक्तों का संग अभी जन्माष्टमी आएगी, झूलन झूलन यात्रा चल रही है, भगवान को झूला झुलाइए, भगवान को जब हम झूला झुलाते हैं तो भगवान भी हमें अपने प्रेम में एक दिन झुलाएंगे, अपनी कृपा से झुलाएंगे, इस भाव से झूला झुलाना। और 2 तारीख को जन्माष्टमी, और अगर आप लोग कोई अभी सितंबर में, मैं बनारस और फैजाबाद में भागवत कथा है, तो कोई गंगा स्नान करना चाहे रपट पड़े तो हर हर गंगे, तो बनारस आ सकते, जूता पहन के मत आना, कई लोग गंगा जी के किनारे जूता पहन के घूमते हैं, एक सूट बूट जूता पहन के बैठ रहा था, घूम रहा था एक आदमी, लोगों ने कहा स्नान करो गंगा जी के किनारे आए हो, बोला बूट है उतारो, कोई चोर लेके चला जाएगा, नुकसान हो जाएगा आपका। तो जेब में हाथ रख के टहल रहा था, अचानक जूता फिसला, सीधे नीचे चला गया, तब बोला हर हर गंगे, इसको कहते हैं रपट पड़े तो हर हर गंगे, अपना विचार तो नहीं था, अब रपट पड़े तो चलो हर हर गंगे। अगर किसी को रपट पढ़ना है तो 12 तारीख से 20 तारीख तक बनारस में भागवत कथा है, खजूरी एक जगह है पांडेपुर, दुबे मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड में, बहुत अच्छा आयोजन है। तो आप लोग, आने जाने का किराया आपका रहा, खाने पीने का हमारा रहा, बस जगह नहीं होगी तो धर्मशाला ढूंढ लेंगे, लेकिन पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा अपने पास रखना, बाद में बोलना मत कि आपने हमको ठग दिया। फिर 22 तारीख से 30 फैजाबाद अयोध्या में, 22 तारीख को रथ यात्रा है अयोध्या में, 23 से 30 भागवत कथा है। तो सरयू स्नान, भगवान के जन्म स्थान का दर्शन करना है तो अयोध्या भी आप लोग आ सकते हो। तो 12 से 30 तारीख तक प्रोग्राम है, 2-3 अक्टूबर को घर आओ। किसी का कोई काम धाम नहीं है, कोई आपका को रोकने वाला नहीं है तो आओ और भगवान की कथाओं का आनंद लीजिए और दर्शन। सबसे बड़ी बात, गंगा जी में स्नान, सरयू में स्नान। अब एक भजन गाएंगे, आप ताली बजाना सब लोग, ताली भी और गाना भी, ठीक है? लाल गोविंद जी आज कथा में बैठे, मतलब अपनी कथा सफल हो गई आज, ऐसा आदमी बैठा है। हल्का टोन, तुम हमसे ऊपर चले जाते। सब गाना है। माखन की चोरी नंदलाल करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे। माखन माखन की चोरी नंदलाल करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे। सब लोग गाओ, सब ने गा रहे। माखन की चोरी नंदलाल करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे। एक दिन गई थी पनिया भरन को, एक दिन गई मैं पानी भरन को, मटकी से मेरी तकरार करे, उन्हीं से राधा रानी प्यार करे। मटकी से माखन की चोरी नंदलाल करे, उन्हें से राधा रानी प्यार करे। एक दिन गई थी फुलवा तोड़न को, एक दिन गई थी फूल तोड़न को, गजरे पर मेरी तकरार करे, उन्हें से राधा रानी प्यार करे। गजरे से माखन की चोरी नंदलाल करे, उन्हें से राधा रानी प्यार करे। एक दिन गई थी जमुना नहन को, एक दिन गई थी जमुना नहाने, एक दिन गई मैं जमुना नहाने, चुनरी पे मेरी तकरार करे, उन्हें से राधा रानी प्यार करे। चुनरी पे मेरी माखन की चोरी नंदलाल करे, उन्हें से राधा रानी प्यार करे। ताली बजाओ। माखन की चोरी नंद लाल करे उन्हें से राधा रानी प्यार करे। एक दिन गई थी दहिया बेचन को, एक दिन गई मैं दही बेचन को, एक दिन गई मैं दही बेचन को, दहिया पे मेरी तकरार करे उन्हीं से राधा रानी प्यार करे। दहिया पे मेरी माखन की चोरी नंद लाल करे उन्हें से राधा रानी प्यार करे। माखन की माखन की चोरी नंद लाल करे उन्हें से राधा रानी प्यार करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, बोले जय जय श्री राधे। एक भजन ट्यून ठीक बजाओ है ट्यून। अच्छा आपको भजन याद है, ये रामचरण सुखदाई भजन कर भाई, याद है या नहीं है? रामचरण सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। रामचरण सुखदाई भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का, राम राम।